एक रहस्यमयी जगह जहाँ चारों तरफ घनघोर अंधेरा था, लेकिन इसी घनघोर अंधेरे में आग और लावे की लाल रोशनी ने उस स्थान को थोड़ा जगमग कर रखा था। वो जगह इतनी गर्म थी कि लोहे को भी आसानी से पिघला दे। वहीं पर बीचों बीच एक बड़ा और ऊंचा सूखे पेड़ की टहनी की आकृति जैसा कुछ दिखाई दे रहा था, लेकिन वो कोई पेड़ नहीं था। वो ऊंचाई पर बना एक सिंहासन था। उस पर कोई बैठा था और उस सिंहासन को घेरे नीचे असंख्य आकृतियां थी जो सिर झुकाकर खड़ी थीं। मालिक, मालिक, बर्फ की गुफा में कैद सभी पिशाचों की आत्माएं एक एक करके मुक्त हो गईं। जहां कल इस संसार में बुराई का एक नया राज स्थापित होना था, वहीं पृथ्वी पर बुराई का अंत हो गया। एक साया सिर झुकाकर बोला, नहीं, ये नहीं हो सकता। सिंहासन पर बैठा वो व्यक्ति जोर से चिल्लाते हुए खड़ा हुआ। उसके हाथ में एक लंबा सा डंडा था जिसके सिरे पर एक नीला रत्ननुमा पत्थर जड़ा था। वो कोई और नहीं बल्कि सभी काली शक्तियों का राजा स्वयं था, जो कि पाताल में रहता था। ये कैसे संभव हो सकता है कि कोई बिना पाताल में कदम रखे वहां पर कैद पिशाचों की आत्माओं को यहां से आज़ाद करवा दे? और पिशाचों का राजा राजकुमार रिवांश, उसकी आत्मा, क्या वो भी मुक्त हो गई? उसके पूछते ही वहां मौजूद आत्माओं में से किसी ने कहा, नहीं मालिक, उसकी आत्मा आज भी बर्फ की गुफा में कैद है जहां बाकी पिशाचों की आत्माएं कैद थीं। फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि बाकी के पिशाच मुक्त हो गए? ऐसे पहरेदारी कर रहे थे तुम? गुस्से में उसने हाथ में लिए डंडे के नीले पत्थर से कुछ रोशनी उन पहरेदारों पर डाली, जिससे वे वहीं पर राख के ढेर में परिवर्तित हो गए। उसने आगे बोला, अगर पिशाचों का राजा सुरक्षित है तो घबराने की कोई बात नहीं। अब वक्त आ गया है कि पृथ्वी पर पिशाचों का राज स्थापित किया जाए, बुराई को एक नया रूप दिया जाए, और ये सब करेगा स्वयं पिशाचों का राजा राजकुमार रिवांश। फिर पूरे पाताल में बुराई के देव की भयानक हंसी गूंज उठी। अगले चंद्रग्रहण में पूरे 93 दिवस शेष हैं, तब तक पिशाचों का राजा स्वयं धरती पर पिशाच राज स्थापित करेगा। ये हमारी भविष्यवाणी है, शैतान की वाणी है। पूरे पाताल में उसकी आवाज गूंजने लगी और नीचे खड़ी शैतानी शक्तियां एक सुर में उसकी जय जयकार करने लगीं। लेकिन उसकी आवाज इतनी तेज और भयानक थी कि उसमें उन लोगों की आवाज दब गई। चारों तरफ बस एक ही स्वर गूंज रहा था, पिशाचों का राजा रिवांश स्वयं धरती पर पिशाच राज स्थापित करेगा। दूसरी तरफ आकांक्षा और रिवांश एक दूसरे की बाहों में प्यार की कस्में ले रही थीं। भले ही वहां बैठे रिवांश के कानों में शैतान की आवाज नहीं पड़ी, लेकिन उसे अपने अंदर एक अजीब सी सिहरन महसूस हुई, जो कि एक शुभ संकेत नहीं था। रिवांश अचानक से आकांक्षा से दूर हो गया। क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? आकांक्षा उसके इस बर्ताव से थोड़ा हैरान थी। आकांक्षा, वो शस्त्र कहाँ है जिससे आपने बाकी के पिशाचों को मारा था? रिवांश खड़े होकर उस दिव्य शस्त्र को ढूंढने लगा। आकांक्षा, आपने हमें ना मारकर सही फैसला नहीं लिया। हम किसी के लिए भी खतरा बन सकते थे। आप वो शस्त्र लें और हमें खत्म कर दीजिए। कहाँ गया वो शस्त्र? वो तो मेरे फेंकते ही गायब हो गया था, लेकिन तुम्हें ऐसे अचानक से हो क्या गया है? आकांक्षा ने रिवांश का हाथ पकड़कर उसे रोका, प्लीज मुझसे कुछ मत छुपाओ। क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है? मैं ही पागल थी जो तुम्हें इतनी वैल्यू दे रही थी। और तुम? बोलते हुए उसकी आंखें नम हो गईं। रिवांश ने उसे खींचकर गले लगा लिया और कहा, ये फिर मत कहिएगा कि हम आपसे प्यार नहीं करते, बल्कि हमें तो आपको देखते ही पहली नजर में प्यार हो गया था। तो फिर ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? हमें बहुत अजीब महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है कुछ गलत होने वाला है, बहुत गलत। आपने हमें बचाकर सही नहीं किया। आकांक्षा, सही गलत डिसाइड करने वाले तुम कौन होते हो? और जब तक हम साथ हैं कभी कुछ गलत नहीं हो सकता। आकांक्षा ने मुस्कुराकर कहा, तो उसकी मुस्कान देखकर रिवांश ने उस एहसास को अपना भ्रम समझकर भुला दिया। आकांक्षा और रिवांश जंगल में घूम रहे थे। अब वहां का अंधेरा मिट चुका था। सूरज की रोशनी जंगल के घने पेड़ों से छनकर वहां उजाला कर रहे थे। थैंक गॉड यहाँ जंगल में इतने सारे पेड़ हैं, वरना इस सनलाइट में तुम्हें प्रॉब्लम होती ना। आकांक्षा रिवांश के साथ एक पेड़ के नीचे बैठी थी। हाँ, भले ही आपने मेरी जान बख्श दी हो, लेकिन है तो हम एक रिवांश अपनी बात पूरी करता, इससे पहले आकांक्षा ने उसके होठों पर अपनी उंगली रखकर बोला, अब फिर ये कभी मत बोलना। तुम क्या हो ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। अच्छा बताओ ना, तुम्हारे पास कौन कौन सी शक्तियाँ हैं? हम अपने शरीर को विशाल कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ हम ही, बाकी के पिशाच नहीं। हम उनके राजा हैं, किसी का भी मन पढ़ सकते हैं, उन्हें अपने वश में कर सकते हैं। अगर तुम किसी का मन पढ़ सकते हो तो चलो बताओ मेरे मन में क्या चल रहा है। नहीं, हम आपका मन नहीं पढ़ सकते। आप पर हमारी शक्तियाँ काम नहीं करती, वरना आपको कब का आपके घर पहुँचा देते। रिवांश के मुंह से घर का नाम सुनकर आकांक्षा ने जीभ बाहर निकाल कर कहा, घर? हे भगवान, मैं दादू और जानवी को तो भूल ही गई। मेरे बिना तो उनका बुरा हाल हो गया होगा। रिवांश, मुझे घर जाना होगा। मेरे दादू मेरा वेट कर रहे होंगे, और जानवी, वो दादू के पास अकेली होगी। और आपके माता पिता? और ये जानवी कौन है? रिवांश ने पूछा। जानवी मेरी फ्रेंड है रिवांश, किसी दिन तुम्हें उससे जरूर मिलवाऊंगी। और मेरे मम्मी पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे, इस दुनिया में दादू के अलावा और मेरा कोई नहीं है, आकांक्षा ने उदास होकर जवाब दिया। नहीं, इस दुनिया में आपके दादू के अलावा अब एक और शख्स भी है जो आपसे बेहद प्यार करता है, और आप फिक्र मत कीजिए, हम आपको आपके घर सुरक्षित पहुंचा देंगे। लेकिन हम वापस कैसे मिलेंगे? और तुम्हारे पास तो मोबाइल भी नहीं होगा, हम बात कैसे करेंगे? यार, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि हम कैसे करेंगे, आकांक्षा एक सांस में जल्दी जल्दी बोल रही थी। रिवांश ने मुस्कुराकर कहा, बस कीजिए, हमारे होते हुए आपको इन सब के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। और हाँ, आप दिल से कभी भी हमारा नाम ले लीजिएगा, उसी पल हम आपकी आंखों के सामने होंगे। सच कहूँ तो मेरा यहाँ से जाने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा है, ये जंगल मुझे अपना ही घर लग रहा है। अगर दादू की फिक्र नहीं होती तो मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाती, लेकिन क्या हम फिर मिल पाएंगे? मुझे अधूरी प्रेम कहानियाँ बिल्कुल नहीं पसंद। आकांक्षा रिवांश से अलग होने के ख्याल से ही परेशान हो गई। रिवांश उसकी बेचैनी अच्छे से समझ पा रहा था, उसने उसके हाथों को अपने हाथों में लिया और प्यार से कहा, आपको ये किसने कह दिया कि हम आपसे रोज नहीं मिलेंगे? आसमान का ये चांद हमारे प्यार का गवाह बनेगा, बस यूँ समझ लीजिए कि जब भी चांद आसमान में दस्तक देगा, उसी के अगले ही पल हम आपकी आंखों के सामने होंगे। आपका भी एक परिवार है और हम आपको उससे कभी जुदा होने को नहीं कहेंगे। अपने परिवार से बिछड़ने का दर्द हम अच्छे से जानते हैं। चलिए, हम आपको जंगल के छोर पर छोड़ाते हैं, वहाँ से आप अपने घर चले जाइएगा। जाने से पहले आकांक्षा ने रिवांश को फिर से गले लगा लिया। वे दोनों एक दूसरे से दूर नहीं होना चाहते थे, लेकिन राजवीर जी के ख्याल ने आकांक्षा को बांध रखा था। सूरज अस्त होने वाला है आकांक्षा, आपके बिना आपके घर वाले परेशान हो रहे होंगे, रिवांश ने उसे खुद से अलग किया। ठीक है, तो फिर कल मिलते हैं, आकांक्षा ने मुस्कुराकर कहा। तो जवाब में रिवांश ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाया। रिवांश ने आकांक्षा को जंगल के छोर पर छोड़ दिया था, जहाँ से वो घर के लिए निकल पड़ी। काफी देर चलने के बाद वो घर पहुंच चुकी थी, लेकिन वहां जाकर उसने देखा कि घर का दरवाजा बंद था। वो जैसे तैसे मेन गेट पर चढ़कर घर के अंदर चली गई। राजवीर जी और जानवी दोनों ही वहां पर मौजूद नहीं थे। दादू कहाँ चले गए? और जानवी, कहीं ऐसा तो नहीं कि जानवी के मॉम डैड वापस आ गए और वो दादू को अकेले छोड़कर अपने घर चली गई हो? बेचारे दादू मेरे बिना परेशान हो रहे होंगे, वो तो एक पल के लिए भी मुझे अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे, और यहाँ तो पूरे 3 दिन हो गए।
अंदर जाने के लिए एक और दरवाजा था। दरवाजा लॉक होने की वजह से आकांक्षा वहीं पर उसके आगे बैठ गई। उसे वहां बैठे कुछ ही समय हुआ होगा कि तभी राजवीर जी और जानवी भी वहां पहुंच गए थे। आकांक्षा को वहां सही सलामत देखकर राजवीर जी दौड़कर उसके पास गए और उसे गले लगा लिया। अक्षु, तू कहां चली गई थी बच्चे? तू ठीक तो है ना? कुछ हुआ तो नहीं? राजवीर जी ने भावुक होकर उसे गले लगा लिया। दादू, आप इतनी फिक्र क्यों कर रहे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप खुद देख लीजिए, मैं आपके सामने सही सलामत खड़ी हूँ, आकांक्षा ने उन्हें शांत करवाया। राजवीर जी ने खुद को संभाला और दोनों को अंदर लेकर गए। अंदर जाते ही राजवीर जी फिर से आकांक्षा से पिछले 3 दिनों के बारे में पूछने लगे। अक्षु, अब तो मुझसे झूठ नहीं बोलेगी और सब सच बताएगी कि इन 3 दिनों में क्या हुआ था। तूने जानवी तक को बता दिया कि तेरे पास शक्तियां हैं, लेकिन एक बार भी मुझे बताना जरूरी नहीं समझा? राजवीर जी की बातों से उनकी नाराजगी साफ झलक रही थी। जानवी की बच्ची, इसके पेट में कोई बात नहीं रह सकती। आकांक्षा ने जानवी की तरफ घूर कर देखा तो उसने गुस्से से जवाब दिया, देखो बोल भी कौन रहा है दादू, जो अकेले अकेले पता नहीं कहाँ घूमती फिर रही है। तुझसे तो हमें बात ही नहीं करनी, एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचा कि अगर तू ऐसे अचानक से गायब हो जाएगी तो हम पर क्या बीतेगी? जंगल में क्या हुआ था आकांक्षा? राजवीर जी के मुंह से जंगल का नाम सुनकर आकांक्षा ने हैरानी से उनकी तरफ देखकर पूछा, दादू आपको कैसे पता कि मैं जंगल में? और मेरी शक्तियों के बारे में आपको जानवी ने बताया ना? नहीं, मुझे जानवी ने इस बारे में कुछ नहीं बताया, बल्कि मैं तो पहले से ही जानता था कि तुम्हारे पास कुदरत की दी हुई कुछ नायाब शक्तियां हैं, बस अब तक इस सच को नकार रहा था। लेकिन कहते हैं कि होनी को कोई नहीं टाल सकता, वो तो शुक्र मनाओ राजपुरोहित जी का, जिनके होते हुए आज इतना बड़ा खतरा टल गया, वरना पता नहीं मेरी बच्ची अकेले कैसे उस बुराई से लड़ पाती। बिना सच बताए राजवीर जी के मुंह से इतना सब कुछ जानकर आकांक्षा आंखें फाड़कर उनकी तरफ देख रही थी। दादू, आप तो अंतर्यामी निकले, बताइए ना आपको ये सब कैसे पता? राजवीर जी आकांक्षा का कुछ जवाब देते उससे पहले जानवी बोल पड़ी, पता है अक्षु, तेरे गायब होने के बाद हम लोग कांगड़ा के मंदिर में गए थे, वहां पर एक राजपुरोहित जी थे जिन्हें सब कुछ पता था। उन्होंने हमसे एक पूजा करवाई और उस पूजा में से एक बहुत ही सुंदर सी तलवार जैसा कुछ निकला था, वो तेरे पास आया था क्या? दादू, जो हो गया उसे भूल जाइए, अब तो सब खत्म हो चुका है ना, और हम अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आ चुके हैं। मैं नहीं चाहती कि हम इन सब के बारे में बात करें, और वैसे भी मैं काफी थक चुकी हूँ, आकांक्षा ने उनकी बातों को टालते हुए कहा। ठीक है, तुम थोड़ी देर आराम कर लो और बाद में डिनर के लिए बाहर आ जाना। तुम एक बार इन सब से बाहर निकल जाओ, उसके बाद हम फिर से कांगड़ा जाएंगे राजपुरोहित से मिलने। राजवीर जी की बात खत्म करते ही आकांक्षा अपने कमरे में आराम करने के लिए जाने लगी तो जानवी भी उसके पीछे पीछे चल पड़ी। जानवी, तुम मेरे साथ किचन में आकर मेरी हेल्प करो और अक्षु को थोड़ी देर आराम करने दो। जब तुम दोनों साथ में होती हो तो दोनों की खुराफत फिर से शुरू हो जाती है। तुम दोनों की बातें तुम कल कर लेना। राजवीर जी की बात सुनकर जानवी मुंह बनाते हुए उनके साथ जाने लगी। आकांक्षा बुदबुदाते हुए जानवी की तरफ इशारे में कहा, हम रात को बात करेंगे और मैं तुझे सब कुछ बता दूंगी। उसकी बात सुनकर जानवी ने हाँ में सिर हिलाया और राजवीर जी के पीछे चली गई। उनके जाते ही आकांक्षा अपने कमरे में आ गई और थोड़ी देर लेट गई। इतना ज्यादा थकने के बावजूद भी नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी और वो रिवांश के बारे में ही सोच रही थी। रिवांश ने कहा था कि वो मुझसे रोजाना मिलने आएगा। जानवी को बताऊंगी तो वो बहुत खुश हो जाएगी। भले ही मैं एक बार दादू को उसके बारे में नहीं बता सकती, लेकिन रिवांश को दूर से दादू से जरूर मिलवाऊंगी। उसके बारे में सोचते हुए आकांक्षा को नींद आ गई। दूसरी तरफ रिवांश जंगल में अकेले झील के किनारे बैठा आकांक्षा के बारे में सोच रहा था। सोचते हुए उसका हाथ झील के पानी में गया और उसके हाथ लगते ही झील का पानी सूख गया। ये कैसे संभव हो सकता है कि झील का पानी हमारे हाथ लगाने से सूख गया? इस झील का पानी तो इतने सारे पिशाच और काली शक्तियां होने के बावजूद भी कभी नहीं सूखा। और अचानक से क्या हमें जो एहसास हो रहा है वो सच है या हमारे मन का एक भ्रम? अब तो हमारी उलझन का हल निकालने के लिए यहाँ कोई और भी नहीं है। क्या शहजादी ने हमारे प्रेम के मुंह में आकर कोई गलत फैसला तो नहीं ले लिया? परेशान होकर रिवांश वहां से जाने लगा। जंगल में उसके अलावा और कोई नहीं था। लगता है कि इस उलझन का हल निकालने के लिए हमें वो करना पड़ेगा जो हमने आज तक नहीं किया था। सोचते हुए रिवांश के कदम जंगलों के बाहर की तरफ निकल पड़े। क्रमशः